हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कशिश गंभीर को आपके पॉडकास्ट कर्म प्रधान पर। और आज मैं हूँ हमारे गेस्ट करण सिंह राठौर जी के साथ। करण रेडियो जॉकी रह चुके हैं, सॉन्ग राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं। इन्होंने मैरी कॉम, अकीरा, गंगूबाई कथियावाड़ी में डायलॉग राइटिंग करी है और फिल्म मेकर भी हैं। इन्होंने अभी एक फिल्म बनाई है हाल ही में जिसका नाम है पाठ। जैकी श्रॉफ जी के साथ इन्होंने फिल्म बनाई है। वेलकम करण, वेलकम टू द शो करम प्रधान।
थैंक यू। आज करण प्रधान है शो
करण प्रधान
जी,
जी
हमारा तो काम ही है शब्दों से खेलना, तो खेल लिए तो थैंक यू सो मच। एंड मुझे खुशी है कि आप यूजुअली लोग बुढ़ापे में जाकर आध्यात्म की तरफ जाते हैं, क्योंकि शायद शरीर उसी के लिए उतना ही कर पाता है लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो हम अगर शुरू से साथ साथ लेकर चले ना, तो शायद बुढ़ापा आए ही नहीं। तो अच्छा है कि आपने काफी अर्ली एज पर इस तरह का पॉडकास्ट शुरू किया है, क्योंकि इस चीज की ना पूरी दुनिया को जरूरत है। भले ही उनको पता ना हो, लेकिन लेकिन उनको जरूरत है। और हो सकता है कि सुनते सुनते उनको एहसास हो के अरे इसकी तो जरूरत थी हमको बहुत पहले से, या हम
ये
तो ढूंढ रहे थे ये चीज। हाँ जी
बात आपने बहुत पदे की बोली। ये आई थिंक कि सभी के साथ ही ये सच है। भी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। स्टार्टिंग में सबको पता नहीं होता कि अध्यात्म की कितनी जरूरत है। जब तक
जी
उसका जिंदगी में इफेक्ट नहीं दिखता, तब तक उसकी अहमियत पता नहीं चलती। तो एनीवे, मैंने करण जी को सुना था इनका एक सॉन्ग गाते हुए, और इनके सॉन्ग ने मुझे, मेरे दिल को छू लिया, मेरी आत्मा को छू लिया। और तब से मैंने सोच लिया था कि मैं करण जी को जरूर अपने पॉडकास्ट पर बुलाऊंगी। तो आज क्यों ना हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपके गाने से ही करें, क्योंकि कुछ लिसनर्स ने डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा है, तो आई एम श्योर कि कुछ लिसनर्स ऐसे जरूर होंगे जो आपको फर्स्ट टाइम डिस्कवर करेंगे। तो क्यों ना आप अपनी ब्यूटिफुल वॉइस एक बारी, अपना ब्यूटिफुल सा एक सॉन्ग सुनाएं।
तो ये गाना है, ये कृष्णमयी इसका नाम है, क्योंकि ये सरेंडर के बारे में है।
वाह
तो मैं सिर्फ गा ही देता हूँ ज्यादा समझाने की बजाय। तू ही है सबसे पहले मेरी जाना, तेरे ही बाद में है ये जमाना, तेरी ही रूह में है मेरा हर ठिकाना, मेरा हर ठिकाना। ओ, 2 दिन की है ये मोई जिंदगानी, पल पल बहती जाए रे, जैसे बहता हो पानी, कहीं मैं भी खाली हो ना जाऊं, कहीं मैं भी खाली हो ना जाऊं, बाहों में भर जाना। तू ही है सबसे पहले मेरी जाना, तेरे ही बाद में है ये जमाना, तेरी ही रूह में है मेरा हर ठिकाना। थैंक
बहुत ही
यू।
सुंदर, दिल
सो
को
बस
छू लिया।
कोशिश कर लेते हैं, बस जितना हो सके
तो
इसको
ये
सुन
वाला
लूं
जो
मैं एक
अभी
बार,
आपने जो
देखें। हाँ
सॉन्ग गाया,
जी।
क्या ये भी पाठ मूवी से था आपकी?
नहीं, ये एक्चुअली गाने का बहुत शौक है मुझे, कंपोज करने का शौक है बहुत। तो मैं सिंगल्स रिलीज करता रहता हूँ, स्पॉटिफाई पर भी मैं हूँ, वहाँ पर मेरे आई थिंक 5-6 गाने हैं और 2 गाने पाइपलाइन में हैं।
मैं आपका
जल्दी प्लेस
लिंक एक
करूंगा।
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसमें।
जी, बढ़िया, ठीक है। मुझे एक सीरीज बनानी थी कृष्णमयी पर, जिसमें इट इज ओनली अबाउट मीरा एंड कृष्णा। आई
वाह,
थिंक सरेंडर सरेंडर जो है ना, वो उनके प्यार में है। उन्होंने कभी उनको देखा नहीं, मिली नहीं, सिर्फ सुना, और जो सुना उसमें ही उनको उनसे प्यार हो गया। और इस तरह प्यार हुआ कि मतलब सब कुछ त्याग दिया। सोचिए, एक राजकुमारी, एक रानी, आई थिंक शी वॉज मैरिड टू अ किंग, उन्होंने सब कुछ त्याग कर गलियों गलियों घूम रही थी एंड ग्रेसफुली। तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम महिलाएं हुई हैं जिन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव किया है, क्योंकि महिलाएं जो है ना, बहुत ज्यादा मोह में अटक जाती हैं, परिवार, बच्चे, तो वो उनसे निकल नहीं पाती। जज्बात, मर्दों का प्रॉब्लम है लस्ट, वो उसमें अटक जाते हैं, अहंकार में अटक जाते हैं, गुस्से में अटक जाते हैं, औरतें मोह में अटक जाती हैं।
बिल्कुल
ये
सही
दोनों
बात।
चीजें जो है ना, वो ह्यूमन बॉडी के साथ ही आपको बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है,
बिल्कुल सही
अनलेस
बात।
आपने साधना साधना की हो तो अलग बात है, बट ये चीजें आपके शरीर के साथ आती हैं। और वही इंसान एनलाइटनमेंट की तरफ जा सकता है जो जेंडर से भी परे जा चुका हो, यू नो, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन एंड धर्म, जाति, तमाम चीजें, जेंडर के भी जो परे जाता है वो अचीव कर सकता है। तो ये कृष्णमयी, इसलिए मुझे मीरा जो है, बहुत हमेशा से उन्होंने मुझे इंट्रीग किया है और अट्रैक्ट किया है। तो
एक सीरियल आया था मीरा के नाम से NDTV पर,
अच्छा,
बहुत साल पहले, देखा आपने वो?
नहीं, मैंने गुलजार साहब की फिल्म देखी थी मीरा,
अच्छा,
बस ये नहीं देखा,
तो एक
मैंने
NDTV
देखना
पर
चाहूंगा
सीरियल
मैं।
आया था मीरा, और उसमें बहुत डिटेल में बताया था कि उनको किस तरीके से कृष्ण की तरफ अट्रैक्शन हुआ, और फिर वो एक अपने गुरु से मिली, गुरु रविदास जी से। फिर गुरु रविदास जी ने उनको वो टेक्निक सिखाई जिससे उनको कृष्ण का हो सकता है, दर्शन हो सकते थे। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगी कि जो टेक्निक उन्होंने सिखाई थी मीरा को, आज के डेट में मैक्सिमम लोगों को उसका ज्ञान ही नहीं है। मैं बहुत खुश नसीब रही हूँ कि मेरे गुरु ने भी सेम टेक्निक मुझे पास ऑन करी थी। उसको हम बोलते हैं
ओके,
शब्द की टेक्निक, शब्द बोलते हैं। और
अच्छा,
हमारे वेदों शास्त्रों में शब्द का ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान बोला गया है अध्यात्म में। तो शब्द का ज्ञान क्या होता है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन से हमारी आत्मा जब ऊपर चढ़ाई करती है अंदर मंडलों में, तो वो शब्द से जुड़ जाती है। शब्द इज बेसिकली लाइट एंड साउंड, रोशनी और साउंड है, शब्द और कुछ भी नहीं है। और इसको अलग अलग नामों से बुलाया गया है अलग अलग रिलीजन्स में। जैसे इसको हम होली घोस्ट भी बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में, इसको ची भी बोला जाता है, इसको हिंदुइज्म में राम धुन बोला जाता है या राम नाम बोला जाता है। जैसे मीरा का एक वो गाना था ना, जिसमें उन्होंने बोला था कि लूटे नहीं कोई, चोर ना लेवे, उनकी लाइन थी उसमें, बहुत फेमस सॉन्ग है। मेरे को धुन धुन से याद होगा वो, लूटे नहीं कोई चोर ना ले, उन्होंने राम नाम के ऊपर गाना बनाया था। तो बेसिकली व्हाट शी सेड वाज कि ये एक ऐसा ट्रेजर है जो कि ना तो कोई आपसे स्टील कर
कोई
सकता है,
आपसे जी।
कोई कुछ भी आपसे ले नहीं सकता, क्योंकि वो आपके अंदर बढ़ रहा है मेडिटेशन के थ्रू। एंड दैट वाज द शब्द टेक्निक जो कि गुरु रविदास जी ने उनको सिखाई थी। और ये मीरा सीरियल में भी दिखाया हुआ है, जब वो 9 साल की थी, उनके माता पिता वहां पे लेके गए थे, तो गुरु रविदास जी ने उनको बताया था ऐसे आवाज के बारे में, उसमें भी दिखाया था है कि वो किस तरीके से कृष्ण से जुड़ सकती हैं। फिर उन्होंने कृष्ण जी का आइडल दिया था उसके बाद उनको, और फिर वो, हालांकि बहुत अजीब बात है कि ये चीज थोड़ी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए थी बहुत सारी मूवीज जो बनी है उनमें, बट जो मेन चीज जो थी जिसकी वजह से वो कृष्ण के दर्शन तक पहुंची थी जिस टेक्निक से, वो कहीं गायब हो गया।
तो ये अंग्रेजों की और मुगलों की एक्चुअली चाल थी कि उन्होंने
नहीं नहीं नहीं
उन्होंने ना
नहीं
ये बीच में आए, उन्होंने सारी किताबें यूनिवर्सिटीज
नहीं
जला
वो
दी।
किताबें वगैरह जलाई,
हाँ
बट इवन क्रिस्टियनिटी में जीसस क्राइस्ट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट होली घोस्ट। इट्स नॉट कि सिर्फ हमारे, सिर्फ हिंदुइज्म में ये चीज सिखाई गई है, ये चाइनीज में भी सिखाया गया। ताओ ची वी ऑल टॉक अबाउट इट। तो हर रिलीजन में सिखाया गया है, हर रिलीजन में अलग अलग नाम से बोला गया है। सिखिज्म में भी सिखाया गया है, गुरु नानक जी ने भी शब्द का मेंशन करा है। तो ये हर रिलीजन में जितने मैसेंजर्स हैं उन्होंने अपने अपनी लैंग्वेज में सिखाया। जैसे कि अभी आई डोंट नो आपने सुना होगा कि नहीं, शाहरुख खान का एक इंटरव्यू आया था पीछे, तो उन्होंने उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि हमारी जो जितनी भी होली बुक्स हैं वो होली बुक्स बातें सारी एक ही बोल रही हैं, बट वो आप ऐसा सोचो कि नॉवेल्स को अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे अपने प्रीवियस एपिसोड में कि हमने कहा था कि बाइबल में थर्ड आई के बारे में मेंशन था, इफ द आई बी सिंगल, बट वो कहीं मिसिंग हो गया क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन मिसिंग हो गई। जैसे आपने बोला था कि इंटरप्रिटेशन मिसिंग हो जाती हैं, तो वो मिसिंग हो गई। अब थर्ड आई के बारे में हिंदुइज्म में भी बोला गया है, थर्ड आई के बारे में चाइनीज में भी, बहुत बहुत सारे रिलीजन्स में बोला गया है, बट वो अलग अलग भाषा अलग अलग टर्म्स में यूज होता है। जैसे हम अपनी माँ को मदर भी बुला सकते हैं, माँ भी बुला सकते हैं, मैं उनको जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में नाम से ही बुलाते हैं, पर मैं उनको जिस भी नाम से बुला लूं, प्यार से कुछ भी बोल लूं मैं उनको, नोनू बेबी माँ कुछ भी बोल लूं, पर माँ तो माँ रहेगी ना, हस्ती तो बदल नहीं जाएगी उसकी, तो वही परमात्मा है। किसी ने पीछे मुझसे यही सवाल एक करा कि क्या है कि तुम्हारा पिता और मेरा पिता तो सेम होगा नहीं, बट द थिंग इज कि जब हम परमात्मा की बात करते हैं, अगर आप इस शब्द को तोड़ लो, ये हो गया परम आत्मा, मतलब सारी आत्माओं का जो आत्मा है दैट इज परम आत्मा, यही बोलते हैं ना। तो अगर हम कहते हैं कि वो जानी जान है, वो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी सीएंट है, सब कुछ जानता है, सब जगह मौजूद है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा परमात्मा या मेरा भगवान जो कि सभी जगह मौजूद है और सब कुछ जानता है, वो आपके अल्लाह से या लॉर्ड से डिफरेंट हो, और वो भी सभी जगह मौजूद हैं, सब कुछ जानते हैं, तो क्या तीन डिफरेंट एंटिटीज बैठी हुई हैं ऊपर जो कि सभी जगह मौजूद हैं और सब कुछ जानती हैं? लॉजिक खत्म हो गया यहाँ पे। तो यहीं पर सारी क्वेश्चन सारा वहीं पर ही आ जाता है, अनुभव के ऊपर। जब तक अनुभव नहीं हुआ इंसान इस पॉइंट तक कैसे पहुंचेगा कि जो सर्वव्यापी है, मैं यहाँ पे बैठ के भी भगवान को प्रेयर कर सकता हूँ, अमेरिका में जाके भी भगवान को प्रेयर करता हूँ, रशिया में बैठकर भी भगवान को प्रेयर करता हूँ, मतलब मुझे पता है कि भगवान मुझे सुन रहा है। तो हमने होली प्लेसेस करके भगवान को लिमिट कर दिया कि भाई तुम बंद गए टेम्पल में, तुम बंद गए कुरान में, तुम बंद गए बाइबल में, उसको कौन मान सकता है? वो एक ही है, सब जगह है, सब में है।
सी जैसे हमारे कल्चर में और मेरे गुरु ये कहते हैं कि टेंपल जो है ना, उसका जो परिभाषा या उसकी जो उसका जो सिग्निफिकेंस था ना, वो अलग था। हमारे इसमें कल्चर में कहा जाता है कि हम लोग कभी भगवान की पूजा नहीं करते थे। हम सीकर हैं, हम सब सीकर्स हैं। हम लोग भगवान ढूंढते थे। हम लोग और हम लोग जो टेम्पल्स है ना, वो सिर्फ उन जगहों पर बनाए जाते थे जहाँ एनर्जी का अपसर्ज होता था नेचुरली अर्थ से ऊपर की तरफ। तो उसको कंटेन करने के लिए मंदिर बनाए जाते थे, और वो भी एक ऐसे शेप में जो एनर्जी को जल्दी डिसिपिटेट नहीं होने देता। जब हम मंत्रों जाप करते हैं तो एक एनर्जी पैदा होती है, उसको अगर आपको ज्यादा देर के लिए रखना है तो एक पर्टिकुलर शेप आपको बनाना पड़ता है उस चीज का। या
खुद
तो
से
शिवलिंग वाला शेप होता है, जो एक वो होता है, एक इजिप्शियंस जैसा बनाते हैं या हम लोग जो बनाते हैं, यू
पिरामिड
नो,
जैसा थोड़ा सा
एक
ऊपर से नैरो।
एंगल होता है। हाँ, एक एंगल होता है उसका टिपिकल, उस
पर
एंगल पे तो
करण,
मंदिर जो थे वो हुआ करते थे, जहां पर लोग अंदर बैठें कुछ देर, अपने आप को एनर्जाइज करें और बाहर आए, ना कि अंदर जाकर आप पूजा पाठ करें या कहीं पर भी आप बना दें। आजकल लोग जगह घेरने के लिए भी कहीं पर भी मंदिर बना देते हैं, फिर लोग तोड़ नहीं सकते, और तोड़ेंगे तो उसको फिर आप एक रिलीजियस एंगल देकर आप यू नो झगड़े
बिल्कुल।
वगैरह सब करवा सकते हैं। तो ये मेरे गुरु ने बताया, जो मंदिर की जो मंदिर बनाने की जो रीजंस हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि भगवान वहीं पर, जैसा कि आपने कहा कि ओमनी प्रेजेंट है वो, तो हर जगह, तो मंदिर क्यों जाना
बहुत
था।
सिंपल सी बात है करण। देखो, मंदिर को अगर आप संधि विच्छेद करो ना, मंदिर, मन के अंदर, मंदिर का मतलब है मन के अंदर, वो जो हमारे मन के अंदर बैठा है। तो मंदिर बेसिकली बनाए गए थे कि जैसे घर में काम वाम करते हैं ना, तो घर में ध्यान नहीं लग पाता, पूरे टाइम शोर आता है, ये तो आज भी ट्रू है। पर आप एक ऐसी जगह बना दो जहां पर आप बैठकर पूरे तरीके से बिना किसी डिस्टरबेंस के परमात्मा को याद कर सको, क्योंकि जो मन के अंदर है वो तो कहीं से भी याद करा जा सकता है, जो सर्वव्यापी है वो तो कहीं से भी याद करा जा सकता है। और हम अगर शेप की बात करें तो आप देखो, जैसे मंदिर ऊपर से नैरो होता है ना, तो वैसे ही आप देखोगे कि जो गुरुद्वारे होते हैं वो भी ऊपर से सिमिलरली नैरो होते हैं, चर्चेस भी नैरो होते हैं, मॉस्क में भी जो पिलर्स होते हैं वो भी नैरो होते हैं। तो इसका एक एक्चुअली स्पिरिचुअल मीनिंग था, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो गया कि सारे के सारे होली प्लेसेस सिमिलर डिजाइन में बने हुए थे, जो जिन्होंने बनाए थे उन्होंने सिमिलर डिजाइन में बना दिए थे, कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे रीजन था, और वो रीजन ये था कि जो शेप है वो सिंबॉलिक है, वो इंसान को ये बताने के लिए थी कि जब अंदर आत्मा की चढ़ाई होती है तो जैसे जैसे चेतना बढ़ती जाती है, चेतना जैसे जैसे इंसान के ऊपर चढ़ती है तो रास्ता नैरो होता जाता है, तभी ऊपर से ऐसा होता है नैरो। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाती जाती है आत्मा, जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, तो वो रास्ता और नैरो होता जाता है, और ज्यादा बारीक होता जाता है। तभी तो वो एक लाइन नहीं है कि जो ये पाथ है ना, एक आग के दरिए की तरह है, परमात्मा का प्यार भी आग के दरिया की तरह होता है, उसमें डूब कर जाना होता है। सच है, बहुत कठिन
यश नहीं
बात
आसान,
है
बस
ये,
इतना समझ लीजिए एक आग
एक
का
आग का
दरिया है और
दरिया
डूब
है
कर
और
जाना है।
डूब के जाना है। बहुत मौत मरना पड़ता है बहुत वहां तक पहुंचने के लिए। मीरा बाई जी ने इतने कष्ट झेले थे, और उन कष्ट झेलते झेलते और वो मेडिटेशन करते करते उनकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे एक्सपैंड होती गई। पर पेन जो होता है ना करण, पेन इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन उसका यह है कि जब इंसान को बहुत पेन होता है तब उस पेन में आकर वो परमात्मा से क्वेश्चन करता है कि मैं क्यों हूं इस दुनिया में, तूने ये दुनिया क्यों बनाई। जो इंसान अच्छी जिंदगी जी रहा है, सब कुछ है, वो इन सब चीजों में कहाँ पड़ता है, वो तो अपना पार्टी कर रहा है। पर जब इंसान के ऊपर प्रॉब्लम आती है ना, तब वो क्वेश्चन करेगा, और उस क्वेश्चन में उसकी सीकिंग एक्चुअली शुरू होगी, और उस एक्चुअल सीकिंग में उसको एक्चुअली रास्ता मिलना शुरू होगा।
इसके अलावा ना, जरूरी नहीं, मैं मेरा जो मानना है कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जब पेन होता है ना तभी इंसान इन चीज़ों को ढूंढता है, वरना उसको कोई ज़रूरत नहीं है, उसको मोटिवेशन ही नहीं है। और कई लोग तब भी ढूंढते हैं जब उनको सब सारे सुख हैं, उनके पास
पर
सारे
एम्प्टीनेस है।
सुख हैं, लेकिन फिर भी ना उनको, क्योंकि क्या है कि ये चीज़ें ना आप शुरू में अच्छी लगती हैं, फिर आदी हो जाता है शरीर, सेंसेस आदी हो जाती हैं, फिर आप थोड़ा ज्यादा करते हैं, फिर और करते हैं, फिर और करते हैं, फिर करते करते थक जाते हैं। अब आपको पता नहीं क्या, कौन सी चीज क्या करें कि आपको खुशी मिले। तो उसके बाद में तो ना आपकी खुशी या हर चीज जो ना एक्सपेंशन ढूंढती है, हर खुशी एक्सपेंशन ढूंढती है। और फिर ये होता है कि अगर आपके कल्चर में, आपके रिलीजन में किसी ने आपको प्रॉपर रास्ता नहीं दिखाया हो, तो फिर आप एक महल में सूने बैठे रहते हैं, एक
बिल्कुल
सोने के पिंजरे में बैठे बैठना जैसा हो जाता है वहां पर।
बिल्कुल बिल्कुल, पर वो
तो
एम्प्टीनेस फील होना भी जरूरी है ना, सबको नहीं होता
हाँ,
एम्प्टीनेस फील,
तो
किसी
लोगों
किसी
को लगता है
को
कि यार
लेट आके पहुंचता है 50-60 के साल में, एकदम से
जी
सब कुछ मिल गया, पर
जी
मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, है क्या
हाँ,
पॉइंट, क्या
उनको
है लाइफ का।
उनको हाँ उनको उनको कोई भी चीज खुशी देना बंद कर देती है। अब उनको, अब कई लोग शादी करते हैं बार 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 बार, क्योंकि वो प्यार ढूंढ रहे हैं, उनको प्यार नहीं मिल रहा है क्योंकि बाहर ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है
बिल्कुल,
कि प्यार जो है वो बाहर से मिल रहा है या बाहर से ही मिलता है।
बहुत अच्छी बात बोली आपने।
आपका जो प्यार है ना, वो लोग सिर्फ चाबी हैं, ताला आपके अंदर है, लोग सिर्फ एक तरह से चाबी की तरह मिलते हैं। एक
बिल्कुल
बार आपको खोल दिया, अब आपको उसको सिर्फ सस्टेन करना, सस्टेन करने के लिए सिर्फ एक रियलाइजेशन चाहिए, आपको कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए। आपने उसे महसूस कर लिया, बस वो आपके अंदर एक कुछ खोल देगा। उसके बाद में आप उसको, इट इज लाइक अगेन एक ही चीज, आप कितनी बार आपको खुशी दे, एक जोक पर आप कितनी बार हंस सकते हो, है ना, वैसा वाला होता है। तो
सही
एक बार
बात है,
इश्क हो गया तो बस उसके बाद कितनी बार करो उसकी एक लिमिट है। अगर वो आपको आदमी दूर गया आपसे या खो गया, तो आप फिर से सैड हो जाएंगे। तो
बिल्कुल
आपको उनको सिर्फ एक चाबी की तरह देखना है, आपको महसूस करना है, आपको ये जानना है कि आप अपने आप में कंप्लीट हैं, आपको कोई पूरा करने के लिए कोई नहीं चाहिए।
ये बहुत
जब
ही
हम पूरा
कमाल की बात बोली आपने करण, सब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, बहुत ही मैं कहूंगी कि 1% लोग हैं जो ऐसा शायद सोचते होंगे, कि जो हमें प्यार मिला है, चाहे वो फैमिली का प्यार हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, पति पत्नी का, बच्चों का, माँ बाप का प्यार हो, वो सारा प्यार जो था वो एक रियलाइजेशन के लिए ही था इवेंचुअली, कि फ्रॉम लव टू डिवाइन लव जाने के लिए था, समझने के लिए कि परमात्मा का प्यार, समझने के लिए कि हर किसी में, हर किसी लिविंग बीइंग में, इवन आपके जो पेट्स हैं उसमें भी परमात्मा है। इवन हिंदुइज्म का सार भी तो यही है ना, कि पत्ते पत्ते में परमात्मा समाया हुआ है, यही सार है। तो उसको समझना था, पर हम लोग गलत रह गए, हम लोग बस वो बाहरी प्यार में ही रह गए, कि अगर ये नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगा, खत्म। वो कुछ समझने के लिए था, ठीक है नहीं मिला तो नहीं मिला, अब क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्यार तो एक तरफा होता नहीं है, प्यार तो दो तरफा ही होगा। अब ये नहीं कहूंगी कि एक तरफा प्यार है तो सच्चा नहीं है, हो सकता है सच्चा हो, एक तरफा प्यार भी सच्चा हो सकता है, बट उस प्यार को एक मुकाम पर लाने के लिए तो दो तरफ से ही होगा ना, एक कहीं पर उसको फॉर्म देने के लिए तो दो तरफ से होना पड़ेगा ना। इवन परमात्मा के प्यार में भी आपको तब तक तसल्ली नहीं मिलेगी जब तक आपको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, जैसे मीराबाई तब तक तड़पती रही थी जब तक उनको कृष्ण के दर्शन नहीं हो गए थे, तब तक उनका प्यार उनको अधूरा लगता था, चाहे वो हो या ना हो अधूरा, हो सकता है पहले से कंप्लीट हो क्योंकि उनमें तड़प इतनी ज्यादा थी, अंदर उनकी आत्मा को रियलाइजेशन हो, बट जब तक उनको दर्शन नहीं हुए तब तक उनको कंप्लीटनेस लगी नहीं उसकी।
क्योंकि उनका उनकी जो तलाश थी वो प्रेम नहीं था, उनकी तलाश थी मोक्ष, एनलाइटनमेंट,
पर भक्ति उसका पार्ट था,
रियलाइजेशन।
भक्ति
हाँ,
वो
वो
तो उनके
रास्ता
गानों में भी
था,
झलकता है।
वो रास्ता उन्होंने चुना। औरतें यूजुअली भक्ति मार्ग ही चुनती, क्योंकि वो इमोशनल होती हैं, तो उनके लिए वो ज्यादा इजी होता है, या ये कहें कि नेचुरली आता है। मर्द लोग ज्ञान और योग
ज्ञान मार्ग।
ज्यादा फॉलो करते हैं। हाँ,
बट
उनको वो ज्यादा नेचुरली है।
इसमें मैं कहूंगी कि जो एक्चुअल में जितने भी लोग आज तक हिंदुइज्म में जो पहुंचे हैं एनलाइटनमेंट की तरफ, मोस्टली सभी ने ये सजेस्ट करा है, इंक्लूडिंग स्वामी विवेकानंद, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान मार्ग चुना था, क्वेश्चन कर करके वो पहुंचे थे अपने मकसद तक, बट उन्होंने भी लास्ट में यही बोला था कि ज्ञान मार्ग को आप भक्ति मार्ग के साथ जब तक कॉम्बाइन नहीं करोगे आप उस गोल तक पहुंचना मुश्किल रहेगा बहुत ज्यादा। तो वो
जी
उन चीजों को, उन मार्ग को कहीं ना कहीं कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको कंबाइन करना पड़ेगा, और वो कंबाइन करना हमारे हम तो कर ही नहीं सकते हैं, वो कंबाइन करना एक पूर्ण गुरु ही सिखा सकता है। मुझे तो मेरे पूर्ण गुरु ने सिखाया था, मतलब मैं अगर खुद चलती कि बुक्स पढ़ के मैं इसको करना सीखूं, इम्पॉसिबल, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। वो तो जो उन्होंने अनुभव दिए थे, तो उन अनुभव के चलते मुझे समझ आया था कि ये ज्ञान मार्ग है, जो मेरी सीकिंग थी, जो मेरे क्वेश्चंस थे, और ये भक्ति मार्ग था। मुझे पता ही नहीं चला है कब कंबाइन हो गई। तो मोस्टली सेंट्स ने ऐसा सजेस्ट करा है, जिन्होंने भी परमात्मा को पाया है, कि कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मार्ग्स इज एक्चुअली व्हाट कैन लीड यू टू एनलाइटनमेंट।
इनफैक्ट मेरे गुरु कहते हैं कि योग भी, क्योंकि कई क्या होता है कि जैसे जैसे इंसान ऊपर बढ़ता है ना, तो बॉडी जो है ना वो उसको कंटेन करने के लायक भी होनी चाहिए, वो जो
बिल्कुल
एनर्जी और जो
बिल्कुल,
आपके शरीर में पैदा होती है। कई इसलिए
यस
बहुत यंग एज पे चले जाते हैं
यस
क्योंकि वो योग नहीं कर रहे हैं, वो एनर्जीज को चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर को कंटेन करने के लायक नहीं बना रहे हैं।
बहुत सही
तो
बात बोली आपने।
भक्ति, ज्ञान और योग तीनों का जब होता है तो बेस्ट है। भक्ति इसलिए, कई लोग बिना ज्ञान के अगर सिर्फ भक्ति पर भी चलेंगे तब भी वो मोक्ष पा जाते हैं, क्योंकि लेकिन तब ये होना चाहिए कि आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, आपका लॉजिक आपको परेशान ना करे।
तो फिर वो
जो
ज्ञान
सिर्फ,
मार्ग आ गया ना उसमें।
हाँ, तो ज्ञान, अगर सिर्फ ज्ञान है तो हो सकता है कि आप सिर्फ इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, आप में करुणा नहीं, आप में समर्पण नहीं है। समर्पण कब आता है? जब आप भक्ति में हो, आप डिवोशन में हो, ऐसा मुझे लगता है। तो भक्ति लास्ट इसलिए क्योंकि भक्ति में ही डिवोशन है, भक्ति में ही समर्पण है।
बिल्कुल। देखो,
ज्ञान में तो आप समझ रहे हैं, समझ
अगर सिर्फ
रहे हैं।
ज्ञान मार्ग से हो जाता, ज्ञान मार्ग मतलब क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन करा, मुझे आंसर मिल गया, है ना। अगर सिर्फ ज्ञान मार्ग से एनलाइटनमेंट मिल जाती, तो हमारे पास हजारों बुक्स पड़ी हैं, लाखों बुक्स पड़ी हैं, उससे आपका डाउट सॉल्व हो सकते हैं। पर क्यों? क्योंकि वो बुक्स आपको एक्सपीरियंस नहीं दे सकती, बिना अनुभव के आप कहीं पहुंच नहीं सकते, अंदर आत्मा की तरक्की हो नहीं सकती। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर सिर्फ इंसान भक्ति मार्ग पर चल रहा है, तो अगर उसको एक्सपीरियंस होने शुरू हो गए हैं, अंदर आत्मा की चढ़ाई होनी शुरू हो गई है, फिर तो उसको जो बुक्स में लिखा है वो अपने आप ही एक्सपीरियंस से ही समझ आना शुरू हो जाता है। जैसे हमने पहले ड्राइविंग के एग्जाम्पल की बात करी थी, आपने ड्राइविंग करनी शुरू करी, पहाड़ों में लेकर गए, सब जगह लेकर गए, आपको ड्राइविंग के बारे में सब कुछ पता चल गया, अब आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो वैसे ही, अगर आपने अंदर आत्मा की चढ़ाई करनी शुरू हो गई मेडिटेशन से, तो उसके बाद फिर बुक्स तो सारी बस ये है कि आपके इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई कर देंगी, बट कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के बिना नहीं हो पाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल,
और एक्सपीरियंस गुरु के ग्रेस से आता है, पूर्ण गुरु के, किसी भी गुरु के नहीं, पूर्ण गुरु के
बिल्कुल
एक्सपीरियंस उनके दी हुई ग्रेस से आता है, और सही टेक्निक जो कि पूर्ण गुरु ही सिखा सकते हैं, जो बेसिकली हम शब्द टेक्निक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आज की डेट में हम अगर YouTube पर देखें तो गुरु तो बहुत सारे हैं, पर हर गुरु का ना एक अपना अपना एक स्तर होता है। स्तर मतलब हो गया कि जहां तक चेतना जिसकी पहुंची हुई है, वो वहीं तक ही आपकी मदद कर सकता है। मतलब अगर मैंने PGT की पढ़ाई करी हुई है, तो मैं 12th क्लास तक पढ़ा सकती हूँ अपना BEd करके, पर अगर मैं खुद प्रिंसिपल हूं, तो मैं आपको आपको भी प्रिंसिपल बनाने के लायक हूं, तो मुझे उसके लिए पहले खुद प्रिंसिपल होना पड़ेगा।
बट कोई भी गुरु जब तक एनलाइटन नहीं हो ना, वो जो सिखाएगा ना, वो किताबी चीजें सिखाएगा, और किताबी
नहीं,
चीजों से आप
जरूरी
कहीं नहीं
नहीं है
पहुंचेंगे।
कि जहां तक पहुंचो वहां तक ज्ञान तो दे सकते हो। जितना ये इतना एक्सपीरियंस है इसमें कि आप आपके अंदर से जो थर्स्ट है ना, वो कभी क्वेंच ही नहीं होगी। आप कहोगे मुझे और एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे और एक्सपीरियंस, मतलब मैंने आपको बताया मुझे इतने साल हो गए, 25 साल से ऊपर, मतलब मैं इतने साल एक्सपीरियंस करती गई करती गई करती गई, थर्स्ट बढ़ती गई। आज भी मेरी थर्स्ट इतनी ज्यादा है कि इतना कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद में कहती मुझे और एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब दुनिया में इतना कुछ स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस करने को है, एक बार ही आप स्पिरिचुअली, आप अंदर, आपकी आत्मा जाग गई, आपको अंदर अनुभव होने शुरू हो गए, फिर जो दुनिया का भी मजा आने लगेगा आपको वो एक अलग लेवल पर आप जियोगे। मतलब बाहर तो है, फिर आपको लगेगा कि बाहर हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम नॉर्मल खाना पीना सोना करके क्या कर रहे हैं, लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। पर कुछ तो मीनिंग जो है ना लाइफ का, वो समझ में आ जाता है, दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, आई वॉज हेयर फॉर इवोल्यूशन। अगर मैंने इवोल्यूशन ही नहीं करा अपनी आत्मा को, तो मैं क्या कर रहा हूं जिंदगी में? अगर मैं इंसान से, ह्यूमन बींग से जरा सा थोड़ा और ऊपर कुछ नहीं बना, जरा सा आगे इवोल्यूशन नहीं करा, तो मैंने क्या करा अर्थ पे आ गई? बिल्कुल जैसे स्वामी विवेकानंदा जी ने कहा था कि दिस अर्थ इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर सोल्स। यहां पर आपकी ट्रेनिंग हो रही है चारों एस्पेक्ट्स में, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, रिलेशनशिप वाइज।
इमोशनली
हाँ, इमोशंस, वही इमोशनली, ठीक है। तो चारों एस्पेक्ट्स में ट्रेनिंग के लिए है ये अर्थ। एंड वंस द सोल इवॉल्व्स, उसके बाद तो फिर देर इज अ नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज।
मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन सुनी थी, और एक्चुअली वो सच्चाई है। सबको लगता है कि हम लोग ह्यूमन, जैसे आप और हम, अब ऐसा सोचेंगे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, बट एक्चुअली हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं ऑन ह्यूमन जर्नी।
यस,
सो वो चीज जब रियलाइज करेंगे तो देन ओनली हमारी घर वापसी